ओम शांति। कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी वो पवित्र ब्राह्मण आत्माएं जो इतने सुंदर स्थान शांतिवन, जिसको बाबा ने कहा था उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा, तो उस पवित्र स्थान पर हम इतने प्यार से बाबा के अनन्य रत्नों से, उनके मुखारविंद से वो मोती वो ज्ञान रतन सुन रहे हैं, जिनको लगता था कि ये सब सुनने के लिए पता नहीं दुनिया में कहाँ जाते लोग, देवियों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और वही मंदिरों की देवियाँ हम सबको अपनी पवित्रता और शक्तियों से सींच रही हैं। आज ऐसे ही अनमोल रतन, ऐसे ही मंदिर की पवित्र देवी, बहुत प्यारा सा फरिश्ता जो अपनी छोटी आयु में ही बाबा के नज़दीक आ गए थे, जैसे कल मोहिनी दीदी बता रहे थे बेबी फरिश्ता, तो ऐसे ही हमारे बहुत प्यारे बहुत रिस्पेक्टेबल आदरणीय जयंती दीदी जी, हम एक हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। आपसे बरसों तक हमने इतने प्यार और पुरुषार्थ की बातें सुनी है कि बाबा से सहज प्यार जुड़ता है। आपके सुनते हैं जब बचपन में बाबा के नज़दीक आना, फिर बाबा इतना विश्वास करते थे कि मेरी ये बच्ची इंग्लिश में बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएगी, और हिस्ट्री हॉल में जब जयंती दीदी कल्पवृक्ष समझा रहे हैं, सृष्टि चक्र समझा रहे हैं, तो बाबा भी छुपके सुन रहे हैं। तो साकार बाबा साकार मम्मा की पालना लिए हुए ऐसे हमारे अनमोल रत्न आदरणीय जयंती दीदी, लगभग अपनी 77 की लौकिक आयु में भी आप बहुत एक्टिव हैं और एकदम फरिश्तों की तरह सब काम ऐसे करते हैं जैसे बस हुआ ही पड़ा है। आप समझ सकते हैं भारत में तो अब आपका बार बार आना और इतना मिलना हो रहा है, इससे पहले बाबा ने आपको विशेष निमित्त बनाया यूरोपियन कंट्रीज की सेवा के लिए, पूरे यूरोप की आप डायरेक्टर रही, लंदन में छोटी सी जगह से आपने सेवा शुरू की थी, दादी जानकी का आप बहुत अनन्य राइट हैंड हैं, बहुत प्यार एकदम दादी जानकी जैसे ही अब आप लगते हैं, इतना दादी ने आपको सींचा है। तो उस छोटे से सेंटर से शुरुआत हुई, विशाल ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना, वो बनने के बाद तो और भी सेवा बढ़ती गई, ऑक्सफोर्ड में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना, और इस तरह से विदेशों में सेवा को चार चांद लग गए। विदेश में रहने वाले सिंधी भारतीय गुजराती ही नहीं बल्कि विदेश की ही लोग वो इस ज्ञान को समझने लगे, जिनके लिए बहुत मुश्किल है भारत की कल्चर को अपनाना, नॉनवेज को छोड़ देना, पवित्रता को अपनाना, तो कैसे आपने उनमें इंजेक्ट किया वो सब, एक आपने लीडर की तरह बहुत सुंदर ग्रुप अपने साथ तैयार किया विदेश में, सभी पांचों कंटिनेंट्स में बहुत सेवा करने के साथ साथ बाबा ने आपको भारत में रखा है एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाकर। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा हेड ही कितना सुंदर है, तो हम सभी दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे अहम वहम इससे मुक्ति पाकर किस तरह सब पर रहम बरसाते रहें, तो हमारे फरिश्ता स्वरूप आदरणीय जयंती दीदी जी से हम सुनेंगे।
ओम शांति। जिस तरह से भगवान की विशेष महिमा की जाती है कि भगवान सत है, भगवान प्यार है, कभी तो इतना तक भी कहते हैं कि प्यार ही भगवान है, सत्य ही भगवान है, और हम कहेंगे कि बाबा ही सत्य है और बाबा ही प्यार का सागर है। इसी तरह से एक और विशेष गुण है भगवान का, जो बहुत ही वर्णन भी होता, परंतु हम बाबा के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल अनुभव की बात भी है, वो है रहम। मैं समझती हर एक जो यहाँ बैठे हैं वो अपने पूर्व ज्ञान से पहले की जीवन को थोड़ा झांक के देखे तो भी आप लोगों को कई ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिस जिस समय भगवान ने आपके ऊपर रहम करके आपको और आगे बढ़ाया, और जब से ज्ञान मार्ग में आए, एक तो भगवान की बड़ी रहम कि भगवान अपना शांतिधाम छोड़कर इस संसार में गमसान की दुनिया में, पतित दुनिया में आए, तो वो तो एक बहुत बड़ी रहम की बात है कि भगवान अपना शांति का स्थान छोड़ के हम सब के लिए आए। परंतु एक एक का मुझे लगता है अनुभव सोचेंगे, अपने बुद्धि में रिवाइज करेंगे, तो आपको लगेगा सचमुच भगवान किस तरह से मुझ आत्मा के ऊपर रहम करके यहाँ तक हमें लाया है। मैं ठीक कह रही हूँ? कौन है जो समझते हैं ये बात, अनुभव की है कि हाँ सचमुच भगवान तो बेहद का रहम दिल है, और कई शास्त्र में तो विशेष इसी गुण का ही वर्णन आता। तो हम एक एक अनुभव करें कि यदि हमें बाप समान बनना है तो हमें कितनी बड़ी दिल, स्वच्छ दिल, इतनी मेहर वाली दिल, इतनी रहम दिल अपने को बनाना होगा, ताकि हम भी बाप समान का कार्य अभी भी कुछ कर सकें। पहले तो है कि हम अपने अनुभव को याद करें कि भगवान ने मेरे ऊपर कितना रहम किया है, और सचमुच दिल पिघल जाती है जब सोचते हैं कि आज तक भी बाबा हमारी किस प्रकार से पालना कर रहे हैं। 90 वर्ष हो गए, और उसमें भी साकार बाबा के 33 वर्ष, और फिर अव्यक्त बाबा की पालना 49 ईयर्स तक हमें बिल्कुल सन्मुख मिलती रही, और आज तक भी बाबा रहमदेव हमको और आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, परंतु साथ साथ अपना वरदान, स्लोगन, प्रश्न उत्तर और अभी अव्यक्त इशारे भी मिलते रहते। तो सागर ने कितना हमें सब कुछ दिया, जो आखिर सागर को भी कहना पड़ा। अभी तो सब कुछ आपको बता दिया, बाकी कुछ रहा ही नहीं। आप याद करेंगे तो अव्यक्त मूल्यां पहले 9-9 पेज चलती थी। इतना लंबा समय तक बाबा हम सबके साथ बैठ करके हमारी पालना करते रहे। अभी समय अनुसार हम मालूम है कि अव्यक्त मूल्यां बिल्कुल 4 पेज के अंदर वो समा लेते, और फिर वही मुरलियों में बाबा ने लास्ट के दिनों में बाबा ने बच्चों से विदाई भी ली। ऐसे नहीं कि बाबा अचानक ही समाप्त हो गए, परंतु बाबा ने कहा ये है समाप्ति, और हम लोगों ने समझा नहीं कि उसका मतलब क्या। परंतु उससे पहले ही इशारे मिलते रहे, इतनी लंबी मुरली फिर बाबा बस आधे पेज की मुरली ही चलाते थे और बाकी दृष्टि। तो बाबा हमें भी सिखा रहे थे कि वचन से भी पार दृष्टि से किस तरह से सेवा करनी होती, और उसके भी बाद में बाबा आधे पेज की मुरली भी नहीं, 1/4 पेज की मुरली चलाते थे एक ही टॉपिक पर। कभी पवित्रता, कभी प्यार, कभी सत्यता, भिन्न भिन्न टॉपिक लेकर के बाबा बिल्कुल शॉर्ट में हमें याद दिलाते थे कोई भी बात। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा सागर ने तो सब कुछ बच्चों को दे दिया है। तो आज की जो स्थिति है, हम सोचें कि जबकि हर प्रकार से सब शास्त्रों का ज्ञान का सार बाबा ने बच्चों को दिया है, और बहुत करके कोई भी प्रश्न आता, चाहे जीवन में आता, चाहे वैसे बातचीत करते कोई थियोरी में आता, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आता, हर एक को मालूम है कि बाबा इस पर क्या हमें उत्तर बताएंगे। परंतु फिर भी हम नहीं पहुंच पाते हैं ऐसे हम बाप समान रहमदेव बने, और वो कारण भी बाबा बताते कि दो बातें बीच में अड़चन आती जिस कारण से फिर वो रुकावट हो जाती और हम इतनी बड़ी बेहद की रहमदिल नहीं बन पाते। वो दो बातें हैं, एक तो अहम और दूसरा फिर वहम। तो पहले बात को उठाते हैं, ये तो है ही फर्स्ट लेसन की बात, परंतु फर्स्ट लेसन लास्ट लेसन सेम है। जैसे देहभान नेचुरल हो गया है, जैसे आज बाबा बता रहे थे, ऐसे अभी उसका दिल को कन्वर्ट करके देही अभिमानी स्थिति हमारी इतनी गहराई से नेचुरल बन जाए जो वो आधा कल्प तक हमारे साथ रहे। आप सोचो कि कोई भी संस्कार होता है 10 वर्ष का 15 वर्ष का, तो भी किसी ने कुछ कोशिश की होंगी उस आदत को मिटाने के लिए। एक बारी ट्राई किया, दो बारी ट्राई किया, फिर तीसरी बारी तो कहेंगे ये तो आदत छूटती ही नहीं है, हम तो कोशिश ही नहीं करेंगे ज़्यादा। परंतु कोई संस्कार न सिर्फ 10-15 वर्ष का, मल्टीप्लाई 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 2500 वर्षों का हो, तो आप सोचो कितनी गहराई से वो मेहनत करके उस बात को ठीक करना होगा। और हम मेहनत करते हैं इतनी और बाबा मदद करता है इतना, परंतु तो भी हम इतनी भी मेहनत नहीं कर पाते हैं जो इस एक बात में परिवर्तन आए, जिस कारण से बाबा को बार बार हमें रिमाइंड करना पड़ता है हर मुरली में, आत्म स्मृति आत्मा निश्चय देही अभिमानी स्थिति भिन्न भिन्न शब्दों से बाबा हमें याद दिलाते हैं। तो अब वो समय है जबकि हम बहुत गहराई से अपने अंदर झांक के देखें कि अभी तक अहम भावना किन बातों में है। किसी ने आज भी मेरे से पूछा कि बाबा विदेशियों की इतनी महिमा भी करते हैं, परंतु साथ साथ थोड़े सी ही, जैसे मानो कि विश्व भर के को झांक के देखें, भारत के टीचर्स तो गिनती के ही गए हैं भारत सेवा, हाँ की सेवा के लिए, परंतु बहुत करके वहाँ के ही लोगों ने ज्ञान लेकर के अपने देश की सेवा की। भाषा कल्चर वीज़ा सब बातें आती है, तो यही सिस्टम वहाँ जैसे भारत में, पंजाब की सेवा पंजाबी बहनें कर रही है, गुजरात की सेवा मोस्टली गुजराती बहनें कर रही है, भाषा की भी बात आती है कल्चर की भी बात आती है, साउथ में भी साउथ वाली बहनें वहाँ की सेवा कर रही है। तो विदेश में भी यही सिस्टम रखा कि वहाँ के लोगों को दादी ऐसी अच्छी ट्रेनिंग देती थी जो थोड़े समय के अंदर, कोई तो एक मास के अंदर भी टीचर बन गए, कईयों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, परंतु उनकी कौन सी एक ऐसी विशेषता थी जिस कारण से थोड़े ही बाबा के बच्चों ने 110 देशों में सेंटर स्थापन हो गया। और हर देश में विदेश में मैं समझती अभी कुछ न कुछ बाबा का कार्य हो ही रहा है या हो चुका है, सेंटर ना भी हो परंतु कुछ हद तक वहाँ पर लोगों ने कुछ तो बाबा की बातें सुनी है। तो मैं सोच रही थी कि उसका कारण क्या, सच्चाई। विदेश में कोई बात छिपाते नहीं है, कोई गलती हो जाती वो संकोच नहीं करते हैं, वो आकर के सच्ची दिल से बताते और फिर जो उसका नतीजा होगा वो उसको स्वीकार कर लेते। तो जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर बाबा की बहुत विशेष मदद है। तो हम पहले तो खुद के साथ सच्चे रहें और खुद के अंदर झांक के देखें गहराई से किन बातों के कारण जो बाबा कहते हैं कि ये अहम और वहम अभी तक रुकावट है, इस कारण से इतना रहम दिल हम नहीं बन पाते। तो अहम की बात पुराना संस्कार है, बहुत काल का संस्कार है, मैपन का। बाबा कवि की भाषा में बात करते हैं तो बाबा ने तीन शब्दों को जोड़ा, अहम, वहम और तीसरा रहम। साकार बाबा तो शिव बाबा आते मुरली सुनाते। बाप दादा जब से अव्यक्त मुरलियां शुरू हुई, हम बाबा का कवि का रूप देखते थे। उससे पहले इतना नहीं कवि का पाठ चलता था, परंतु बाद में हर अव्यक्त मुरली में बाबा कभी दो शब्द, कभी तीन शब्द ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को सहज हो याद करना। एक भी शब्द याद आया तो दो और शब्द बाबा की बातें याद आएंगे। तो बाबा इतना रहम दो जो तुम को बाबा सोचते कि बच्चों के लिए रास्ता और सहज कैसे बने, और सहज कैसे बने। तो सुनने में भी मजा आता, परंतु सिर्फ सुनाई की बात नहीं है। बाबा चाहते बच्चे ये बातें धारण करें। तो धारणा के लिए कवि के रूप में बाबा दो बातें, तीन बातें सुनाते, ताकि बुद्धि में सहज याद भी रहे। तो फिर हम उस बात पर न सिर्फ मनन चिंतन करें परंतु प्रैक्टिस करें। तो ये अहम की बात गहराई से हम यदि जाकर देखते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने एक तो बताया है कि कैसे पहचान हो कि अब तक मुझे देहभान अथवा वो कुछ हद तक वो पुराना अहंकार अभी तक गया नहीं है। तो पहली निशानी तो ये है, यदि मुझे कोई भी बात में दुख होता उसका कारण देह अभिमान, यदि मेरी आत्मस्मृति होती, देही अभिमानी स्थिति होती, तो किसने कुछ कहा हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। परंतु मुख्य बात, हम उसको अंदर एक दुख की महसूसता में नहीं आएंगे। हम सोचेंगे कि चलो इसने मुझे इशारा दिया है तो ये भी मेरा मित्र है। सच्चा मित्र वो जो मुझे बताए कि मुझे और किस बात पर पुशारत करना है। नहीं तो जो मित्र होते हैं वो आपको अपनी कमी बताने नहीं चाहते हैं। तो सच्चा मित्र वो जो हमें कुछ ध्यान पर देवे पाते, और यदि हम देख करके सोचते हैं कि सचमुच ये तो उसका अनुमान है नहीं बात ऐसी, तो हम उस समय उसको दुख होकर के नहीं लेंगे परंतु शांति से सुन लेंगे। और फिर जिस समय मौका बनेगा उससे बातचीत करने का, तो हम उससे बातचीत करके उस बात को क्लियर करेंगे। परंतु यदि मैंने किसी भी सिचुएशन में किसी भी बात में दुख लिया, कारण कि मेरा देह अभिमान है। और यदि देह अभिमान से हम परे गए तो हंसते हंसते बैलते बैलते हम आगे चलते चलेंगे। उस व्यक्ति से भी हम हंसते हंसते बातचीत करके बात को क्लियर कर लेंगे। परंतु दुख लेवे उससे तो और ही आत्मा ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, दुख मुझे और ही बाबा से दूर कर लेगा। तो अहम भाव, एक तो पहले कोई भी बात के कारण हम दुख लेते हैं, और ये तो ऐसे चिन्ह है जो तुरंत हम समझ सकते हैं कि यदि हमने इस बात को स्वीकार किया कि देही अभिमानी स्थिति में जहां पर मैंपन नहीं है, हम सहज उस बात को समझकर आगे चलेंगे, और जहां देहभान है हम उस बात में अटक जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी निशानी है। तो जब भी कभी भी कोई बात का दुख आता, आप तुरंत सच्चाई से अंदर झांक के देखो कि कारण इसका क्या है, और आपको पता चलेगा किस बात का देह अभिमान है। और दूसरी बात, जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि मैं राइट हूं, संकल्प में ये बात आई, वचन में ये बात आई, उसका मतलब अहम भाव। क्यों? क्योंकि जब हम देही अभिमानी स्थिति में हैं, जो सत्य बात है हमने बता दी, हमें प्रूव नहीं करना पड़ता कि मैं राइट हूं। और उस बीच में भी बाबा को लाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मेरा विचार राइट है, हम ये सोचते हैं कि बाबा ने कौन सा इशारा दिया है। और जो भी बातें हमारे जीवन में आती है, आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि दूसरे दिन बाबा की मुरली में उसका उत्तर आता, बाबा उसको एक्सप्लेन करता किसी न किसी प्रकार से। जैसे आज भी बाबा ने कहा, बाबा सब कुछ देख रहा, सब कुछ सुन रहा, और न सिर्फ आवाज से बातें सुनता परंतु दिल की आवाज क्या है वो भी बाबा के पास पहुंच जाती। भगवान को देर नहीं होती है सब बच्चों को समझना और उसको उन अनुसार पालना देना। तो कल हमारी कुछ बातचीत चली, आज बाबा मुरली द्वारा उत्तर दे रहा, तो भगवान कानों बिगर भी सुन लेता। क्यों? क्योंकि जैसे माँ होती, माँ को तुरंत पता चलता कि बच्चों को क्या चाहिए, उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही माँ पहले से ही जानती है और पहले से ही उसके लिए इंतजाम करके रखती है। तो बाबा सबसे बड़ी माँ हम सबके दिलों को जानता और हमें उस प्रकार से पालना भी देता और उसका उत्तर भी दे देता। तो जबकि हम ये सोचते कि बाबा ने क्या कहा, तो फिर उसमें ईगो की बात नहीं आती कि मैं राइट हूँ या दूसरा कहे कि मैं राइट हूँ। आप सोचो, जहाँ पर आजकल हम कहते हैं टीम वर्क, हर स्थान पर, चाहे सेंटर्स पर भी हम कहते हैं ये हमारी मददगार टीम है, या लौकिक काम पर भी कितना भी होशियार बॉस हो, उसको मालूम है कि मेरे टीम के बिगर कुछ नहीं होता। तो बाबा ने भी आज बहुत प्यार से, नम्रता से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने बच्चे अपने साथ चाहिए, अथवा अपनी टीम मुझे अपने साथ जरूर रखनी है, उसमें हमारी ही प्राप्ति। भगवान वैसे सब कुछ कर सकता, परंतु भगवान भी हमारे भाग्य बनाने अर्थ हमें इकट्ठा करके हमें कहता है अभी आप मददगार बने। तो टीम में सबसे बड़ा नुकसान करने वाली लौकिक एंड अलौकिक दोनों तरफ अहम भाव, मैं राइट हूं, इसका मतलब बाकी सब रॉन्ग है नहीं। हम सबकी अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी अनुभव की बातें हैं, परंतु सबसे राइट कौन है? वो बाबा।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
पिता ने बसाया है।
तो जब बाबा भूल गए और अपनी अस्तित्व को भूल गए तो उस समय जरूर ये संकल्प आता कि मैं राइट हूँ। परंतु आगे के लिए आप ये तीन शब्द याद रखना, जब जब ये संकल्प आता कि मैं राइट हूँ, आप उसी घड़ी उसको पकड़ लेना और ये सोचना कि बाबा ने क्या बताया है, तो आपको बिल्कुल सहज सहज उत्तर भी मिल जाएगा और सब उसमें शामिल भी हो जाएंगे। एक बारी दादी से पूछा गया, दादी जानकी से, कि कैसे पता चले कि हमारा संकल्प हमारा है या बाबा की टचिंग है। आपके पास भी कभी कभी ये संकल्प आया होगा, कैसे पता चले? किसके पास ये प्रश्न आया है कभी, चाहे खुद के लिए चाहे औरों के लिए? लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हाँ बाबा की टचिंग होती, कभी कभी मेरा संकल्प होता। तो दादी ने बहुत सिंपल बात बताई। दादी ने कहा कि यदि बाबा की टचिंग है और हम उस घड़ी वो बात बताते हैं, सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। और ये हम नहीं कहते बाबा ने कहा, नहीं, जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने मुख द्वारा उच्चारण किए हैं उसके लिए हम कहते हैं कि बाबा ने कहा। बाकी मेरी टचिंग है तो वो भी हम स्पष्ट कहते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा। नहीं, दादी जानकी कभी नहीं कहती थी बाबा ने कहा, अनलेस बाबा ने एक्चुअली वो मुरली में कहा हुआ हो या साकार में जो मुलाकात होती उसमें कुछ कहा हुआ हो। नहीं तो जैसे कि हम बाबा की अथॉरिटी को यूज करते हैं कि बाबा ने कहा आपको मानना होगा, नहीं, बाबा की टचिंग मेरे पास ऐसी थी। परंतु हो सकता है कि आज नहीं तो आगे चल करके वो भी बात प्रैक्टिकल रूप होंगी। परंतु यदि सब उस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे भी विश्वास होता है कि हाँ बाबा की टचिंग मेरे पास ठीक पहुंची। और यदि स्वीकार नहीं हो रहा है, हर्जा नहीं है, यदि आइडिया अच्छी है, हो सकता है कि एक साल के बाद कुछ समय के बाद वो बात का प्रैक्टिकल रूप हो, अभी तक वो समय नहीं था, तो मैं थोड़ा इन एडवांस में कह रही हूँ। परंतु हम उस घड़ी बालक सो मालिक का मंत्र, मालिक होकर के अपना विचार दिया और बालक होकर के जो सब कहे उसको स्वीकार करके मान करके चले। ऐसे नहीं कि मेरी आइडिया है आप नहीं मानेंगे तो बस मुझे नहीं इसमें भाग लेना है, नहीं ऐसी धमकी भी नहीं देनी है, वो तो बाकी भी अहंकार की निशानी स्पष्ट होती। तो ये शब्द हम ध्यान देवे, कि हम ये न कहें आई एम राइट, मैं ही राइट हूँ। और दूसरा एक और सूक्ष्म बात, मैंपन की। जब हम ये शब्द कहते हैं मेरी पसंदी ये है, दैट मीन्स कुछ नापसंदी भी है। और योगी के लिए कहा जाता है योगी हर बातों में समान, कोई भी बात में ऐसे नहीं ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, नहीं, हर बात में समानता। जब हमारी योगी स्थिति है तो हम सब बातों को स्वीकार करेंगे, चाहे किसकी आइडिया हो या कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि आज यदि हम कोई भोजन के लिए कहते हैं ये अच्छा है, तो कई बातें हम जो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद है, सब कुछ हम प्यार से स्वीकार करें। और यदि आज भोजन के लिए हम कहते हैं कि ये अच्छा है ना है अच्छा है, या किसी कपड़े के लिए या जूते के लिए कहते हैं, तो भी आप सोचो ये बुद्धि में एक आदत पड़ जाती, और कल फिर हम मनुष्य के लिए कहेंगे ये अच्छा है, ये पसंद है, ये नापसंद है। तो ये जो शब्द आता है प्रेफरेंस का, मेरी पसंदी या नापसंदी, ये भी देहभान की निशानी। भोजन जो मिले वो प्यार से स्वीकार करे, क्योंकि ब्रह्मा भोजन है, और भगवान से ये वायदा किया हुआ है जो आप खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो पहनाएंगे, वो हम स्वीकार करेंगे। नहीं ये अच्छा नहीं है, इसकी और क्वालिटी होती तो और अच्छा होता, वही मुझे पसंद है। अब सोचो कि ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, परंतु उससे ही हमें पता चलता कि कहाँ तक हमारा अहम भाव अभी तक शरीर वाला है या स्वमान वाला है। मैं हूँ आत्मा, किसकी संतान, और कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। और स्वमान की स्थिति ऐसे होती जिसमें सबकी तरफ से वो मान मिलता, मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता कि मेरी महानता को आपने नहीं पहचाना। नहीं, आत्मा है ही महान, तो उसको कुछ अपनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सब कहेंगे कि हाँ इस आत्मा में बहुत महानता है। परंतु देवमान है तो महानता नहीं हो सकती, स्वमान है तो फिर अनेक औरों को भी हम मान देख करके उनके साथ उस रिस्पेक्ट से चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली मान वापस हमारे पास ही आता है। मांगने से नहीं मिलता, कर्तव्य के द्वारा, गुणों के द्वारा पता चलता तो वो मिल जाता। तो अहम को मिटाने के लिए कितना गहराई से हमें अपने संकल्पों पर ध्यान देना होगा। वचन कर्म बाद की बात है, पहले तो संकल्पों के ऊपर इतना ध्यान रहे। आप दादियों को सोचो, मैं समझती यहाँ बहुत करके बाबा के पुराने बच्चे हैं, कुछ नए नए आत्माएं भी आई है, परंतु विशेष जो पुराने हैं, क्योंकि पंजाब जोन का तो आदि का सेवा का स्थान है, फर्स्ट सेंटर्स तो पंजाब और दिल्ली में खुले थे और बॉम्बे में, फिर और स्थानों पर, तो कई तो उस आदि समय के भी रतन बैठे हुए होंगे। आज भी सवेरे एक दो मिले, परंतु यहाँ भी अभी भी कई होंगे। तो आप लोगों ने दादियों को नज़दीक से देखा है, और जो लास्ट में भी आए उन्होंने भी, मैं समझती दादी रतन मोहिनी जी वो भी लास्ट दादी थी साकार में, परंतु उनकी एक विशेषता ये, उनकी इतनी नम्रता, हर दादी में ये गुण देखा होगा, इतनी नम्रता जो औरों को आगे बढ़ाए, औरों को आगे रखे। और नम्रता कहाँ से? स्वमान की स्थिति से, ऐसे नहीं कि मैं कम हूँ तो आप मेरे से और हैं, नहीं, परंतु हर एक आत्मा के अंदर गुण है, हर एक बाबा के बच्चे हैं, या बाहर वालों के लिए भी हर एक के अंदर वो गुण देख करके उनको मान देना और फिर अपने आप ही वो वापस अपने पास आ ही जाता। तो मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से दादियों ने बाबा को फॉलो किया, बाबा इतना रहमदिल है जो खुद अव्यक्त होकर फिर दादियों के द्वारा कितनी हम सबको पालना मिलती रही, पिछले साल तक भी दादियों की पालना चलती रही। तो ये भी बाबा का रहम कि बाबा ने ऐसे आत्माओं को ट्रेनिंग दी जो नेक्स्ट बाबा के वो थे और हमारे सामने वो सब एग्जाम्पल्स रहे हैं। और वो जब एक दोस्त से भी मिलते थे इतना रिस्पेक्ट से, इतना मान से, वो उसको दादी कहे, वो उसको दादी कहे। जैसे दादी गुलजार आयु में छोटी थी परंतु कर्तव्य तो बहुत महान था। दादी जानकी दादी गुलजार को दादी कहती थी और दादी गुलजार दादी जानकी को दादी कहती थी। तो दोनों का आपस में इस प्रकार से रिस्पेक्ट का नाता। और ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, दादी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दिल से प्यार से उनका आपस में वो जो संबंध था, वो पुराना अनादि अविनाशी बाबा ने जो स्मृति दिलाई कराची के दिनों में वही चलता रहा। उस आधार पर यज्ञ में एकता रही। आप सोचो बाबा के साकार होने के बाद बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां फाउंडर चला जाता फिर उसके बाद में टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि पावर, मनी, इन बातों में मैपन, ये सब बातें आ जाती। और यहाँ पर बाबा ने जिन दादियों को वो इतनी पालना दी, उन्होंने इतनी आपस में एकता बना के रखी, जो वो फाउंडेशन दादियों के अव्यक्त होने के बाद भी वो चल रहा है, इतनी उनके अंदर नम्रता भाव। तो हम सब भी बाबा की स्थापना के कार्य को संपन्न करने चाहते हैं, हमें भी इतनी नम्रता भाव आत्म स्मृति के द्वारा अपने सच्चे सच्चे स्वमान की स्थिति में रहें, तो फिर अहम भाव खत्म होता जाएगा। फिर जो ये शब्द आता है, पहले आप, पहले आप, आपका विचार क्या, बाबा ने क्या कहा, वही बात आएंगी। और दूसरी बात जो बाबा ने कही है, वहम। हर इंसान परिवर्तनशील है, चक्कर ही परिवर्तनशील है, आत्मा भी परिवर्तनशील। तो आज जो आत्मा है कल वो सेम नहीं थी, उससे पहले कुछ और थी, और जो कल आने वाला है उसमें भी यही आत्मा वही नहीं रहेंगे। परंतु हमारा वहम ये होता कि उसने कल मेरे से गुस्सा किया तो आज भी मेरे से गुस्सा करेंगे। कितने बारी ये संकल्प आता, या कल और आज तो फिर भी चलो, परंतु 10 साल पहले किसी ने गुस्सा किया, हम वही वहम बुद्धि में रखते हैं कि आज भी ऐसे ही उसका संस्कार है। कितनी बातें उसके सामने आई होंगी जिससे वो सीख करके आगे बढ़ा होगा, वो हम भूल जाते, परंतु वही बात बुद्धि में आती तो हम उस डर से या उस वहम से उसके वार्तालाप करते हैं। तो रिसेंटली बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, वृत्ति से वायुमंडल बनता। और यदि हम चाहते हैं कि अभी और आगे सेवा फास्ट स्पीड से हो, मनसा सेवा वृत्ति द्वारा हम वायुमंडल ऐसा बनाएं, उस आधार पर ही सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। आप क्यों मधुबन में भाग भाग के आते हैं? वातावरण के लिए, वायुमंडल के लिए? नहीं तो आप वही मुरली घर पे भी सुन सकते हैं। आजकल तो बाबा टीवी पर भी है तो आप टीवी में भी देख सकते, परंतु आप एक दिन की यात्रा, 2 दिन की यात्रा, कितना भी कष्ट हो सहन करके यहाँ आते। और जैसे आज बाबा ने बताया कि कहाँ पर अधिक संख्या है तो लाइन भी लगती है हर बात की, परंतु वायुमंडल, वातावरण, वो खींचता आत्मा को। तो जहां जहां पर हम रहें, चाहे अपने घर में, चाहे अपने कारोबार ऑफिस में, कहां पर भी हो, क्या हम ऐसे वायुमंडल बना सकते? हाँ बिल्कुल। मधुबन में आते हैं हम अनुभव करने के लिए, वो अनुभव हम साथ लेके जाएं ताकि हम औरों को भी वो प्राप्ति करा सके। तो यदि वायुमंडल को शक्तिशाली बना के रखना है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, उसमें प्यार भरे सत्यता के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस हो, सब संभव है। हमारी वृत्ति पर आधार है, वृत्ति से वायुमंडल। तो वृत्ति में मेरा क्या चल रहा है? वृत्ति में आज मैं आपको देखती हूँ, 10 साल पहले वाली बात याद आती तो उसको कोई शुद्ध वृत्ति नहीं कहेंगे। तो हमारा ये जो अनुमान होता है, वहम होता कि आत्मा वही तो है ना, हाँ आत्मा है, परंतु उस आत्मा ने भी इतने वर्षों में अपना कुछ तो परिवर्तन लाया होगा, तो क्यों ना हम उसको उस दृष्टि से देखें जैसे बाबा हमें देखता। अभी तो बाबा का निमंत्रण है कि हम ऊपर आकर के वो अनुभव करें। बाबा कहते हैं कि मैं अभी नीचे नहीं आऊंगा, आपको ऊपर आना होगा। तो ऊपर जाने के लिए इतनी शुद्धि चाहिए, इतनी हल्कापन चाहिए, तो ही फिर हम उड़ के वतन में बाबा की मुलाकात कर पाएंगे। तो आप देखेंगे जहाँ कचरा होता वो भारी होता, कचरा निकल जाता वो कितना लाइट होता। एलॉय है सोने में वो भारी, एलॉय निकल गई वो कितना हल्का सोना। तो इसी तरह से आत्मा के अंदर पुरानी बातों की एलॉय है, वो वहम है, एक तो मनुष्यों के प्रति और दूसरा फिर सर्कमस्टेंसेस के प्रति भी। दादी को हम कहते थे ना कि दादी ये बीमारी पहले भी मेरे पास आई थी और बहुत समय तक चली थी, पता नहीं अभी कि कितना समय चलेंगे। दादी कहती थी ये तुम्हारा वहम है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम भी बीमारी को नहीं जानती थी, शायद जिस डॉक्टर के पास आप गए उन्हों को भी थोड़ा टाइम लगा उस बात को समझने में, तो उस समय आपको थोड़ा टाइम लगा उस बीमारी को ठीक करने में। जरूरी नहीं है कि अभी आपको इतना टाइम लगे, हो सकता है कि और अच्छी दवाइयाँ निकली हो जो आपको जल्दी ठीक कर लेवे। तो पहले से ही आप ये संकल्प रखेंगे कि अभी तो ये बहुत बीमारी लंबा समय चलेंगी, तो क्या होगा, सचमुच लंबा समय चलेंगी। और आप ये वहम निकाल देंगे और कहेंगे हाँ आज ये बीमारी आई है, परंतु हाँ जल्दी बाबा की मदद से राइट डॉक्टर मिलेगा, राइट दवाई मिलेंगी, ठीक हो जाएंगे। तो आप देखना बाबा का जादू का खेल कैसे होता, और सचमुच वो बीमारी अभी जल्दी ठीक हो जाती। परंतु मनुष्यों के लिए भी वहम होता, दवाई तबियत के लिए भी वहम होता, भोजन के लिए भी वहम होता। आप लोगों ने ये कहानी तो सुनी है कि कराची के दिनों में बाबा ने उन्हों को रोटला और छाछ खिलाया, एक दिन नहीं 15 दिन। और कईयों को संकल्प था कि हम ऐसे भोजन करेंगे तो हमारी तबीयत पर असर होगा, तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, पेशेंट का किचन है, पेशेंट का खाना वहाँ बनता, आप अपना नाम दे दो, आपके लिए वो भोजन जो आपके तबीयत अनुसार ठीक है वो चलेगा। परंतु कई थे जिन्हों की तबीयत नाजुक थी, परंतु उन्हों को ये विश्वास था कि बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है, मैं यदि उस डायरेक्शन को पालन करेंगे कुछ नहीं होगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक चलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा के डायरेक्शन को हम पालन कर रहे हैं। और सचमुच उन्हों को कुछ भी नहीं हुआ, तबीयत बिल्कुल ठीक की ठीक रही। और फिर ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, क्योंकि फिर आबू में आकर पहुंचे तो उस समय वॉर अभी फिनिश हुई है, चाहे वर्ल्ड वॉर चाहे पार्टीशन वॉर, और फिर उस समय इतने सारे इकट्ठे आकर के छोटे से गांव, उस समय तो आबू गांव था, 60s में भी जब मैं पहले आबू में आई बिल्कुल छोटा सा गांव था, इतनी दुकान, इतना सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो उस समय छोटे से गांव में 350 लोग अचानक आकर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भोजन की इतनी कठिनाइयां थी। वैसे भी बाजार में भी नहीं मिलता था, सब कुछ राशन पर था, और बाकी भी ड्रामा अनुसार परीक्षा आने वाली थी बेगरी पार्ट की, तो वो भी बहुत समय तक चली, एक दो सप्ताह नहीं चली, कुछ मास तक चलती रही। और सेंटर्स भी, जब मैं फर्स्ट टाइम सेंटर्स पर जाने लगी, जब मैं बहुत छोटी थी 50s में, 1957, मुझे याद है कि कितना सिंपल थे, बहुत बहुत सिंपल, अति सिंपल। और दादी की कहानियां सुनी है कि दिल्ली में जब 53 में पहुंचे, 54 में, उस समय उनको क्या मिलता था खाने के लिए? रोटी और नमक, इतना तक। और वो भी एक दो दिन की बात नहीं, कई दिनों तक वो चलता रहा, कुछ मास तक चलता रहा। परंतु वो ट्रेनिंग बाबा की, भगवान खिला रहा, और आत्मा का रिस्पॉन्स, बाबा जो आप खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, हमें वो स्वीकार है। तो उस निश्चय से देखो कहां से कहां तक पहुंचे हैं। तो हम भी बाबा में विश्वास रखें और अपनी इमेजिनेशन को न फास्ट चलने दें। बाबा ने बताया है कि जब व्यर्थ संकल्प आते हैं बहुत फास्ट स्पीड से आते हैं, ऐसे न हो जाए, ऐसे न हो जाए, ऐसे न हो जाए। अभी किसके साथ थोड़े दिन पहले बात कर रही थी, तो कुछ बात ठीक नहीं है, तो उनको सुलझाने के लिए कुछ राय निकल रही थी, तो हम उनको कुछ राय दे रहे हैं, और वो फिर कहते हैं परंतु ऐसे होगा तो ऐसे होगा ऐसे। मैंने कहा फुल स्टॉप, अभी तक वो बात आपने ट्राई ही नहीं की है सुलझाने की, और आपने अभी से ही वो अनुमान लगाए कि ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। आप अनुमान रखेंगे, वहम रखेंगे तो होगा, परंतु आप एक एक स्टेप जो बाबा की टचिंग से राय मिल रही है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो और उसका रिजल्ट आप देखो। तो जो फास्ट संकल्प चलते हैं, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। वहम का संकल्प मत करो, क्योंकि क्या मालूम क्या होने वाला है। शुभ संकल्प से शुभ ही होगा, अशुभ संकल्प से जो अच्छा होने वाला भी है उसमें मिक्सचर हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं होगा। तो बाबा की ये बहुत प्रैक्टिकल जीवन में ऊंच बनाने की युक्तियां हैं जो बाबा हमें सहज करके बताते हैं। अहम और वहम का त्याग करो तो दिल आपकी बड़ी हो जाएंगी, सबके प्रति आपके मन में रहम भावना होंगी। उसमें आप सोचो, रहम भावना के लिए पहले तो चाहिए शुभ भावना, और पहले खुद के लिए भी शुभ भावना। जैसे आज भी बाबा ने कहा, हम खुद अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वमान में नहीं रहते, परंतु खुद को भी हम समझ कर उस स्वमान में रहें, बाबा को भी हम समीप रखें, तो फिर हर आत्मा के प्रति ये भावना होंगी, ये आत्मा भी बाबा के नज़दीक आए, किस तरह से भी बाबा के नज़दीक आए। तो आप सोचो विश्व का परिवर्तन बहुत सहज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बाबा ने ये जो हमें होमवर्क दिया है इस वर्ष के लिए, बिल्कुल कोई भी कारण न हो, अपनी स्थिति निश्चय बुद्धि के आधार पर श्रेष्ठ ऊंची बना कर रखें, हरेक के प्रति रहम भावना रखें, तो बहुत जल्दी ही मुक्तिदाता बन सकेंगे और जीवन मुक्ति धाम में भी जल्दी आ जाएंगे। तो आज आप बहुत अच्छी तरह से जो भी बाबा आपको ब्लेसिंग्स देने चाहता है, आप बुद्धि को बिल्कुल फ्रेश क्लीन रखना, ताकि इस बर्तन में वो बाबा की ब्लेसिंग्स आती रहे और वो आप अपने ब्लेसिंग्स को यूज करते चलना जीवन में। ओम शांति।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना ना हद में ठहरना, सदा नदिया सबेते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना।